ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रणितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य दिशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिताश्विशाखानितंश्च हे कृष्णकरुणारसिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरी यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतां परमानंदमाधवं ओं नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 12 से 14 तो 14 हम पाठ करेंगे इसमें प्रभुपाद जी ने परपोट दिया है
बालघ्न व्रीडितास्तत्र बालहत्याहत प्रभा बालहत्याव्रतं चेरु ब्रह्मणे यत् निरूपितम् यमुनायां महाराज स्मरन्तो द्विजभाषितम्
शब्दानुवाद। बालघ्न, बालक का वध करने वालों, बाली, व्रीडिताहा अत्यंत लज्जित, तत्र यहाँ वहाँ, बाल हत्या बालकों का मारने के कारण, हत हीन प्रभा समस्त शारीरिक कृति, बाल हत्या व्रतम बालक की हत्या का प्रायश्चित, चेरु क्रिया ब्राह्मणे ही पुरोहितों के द्वारा, यत जो निरूपितम कथित, यमुनायाम यमुना नदी के तट पर, महाराज हे राजा परीक्षित, स्मरन्त्य स्मरण करते हुए, द्विजभाषितम ब्राह्मण के द्वारा दिए गए आदेश। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। रानी कृतदिति के सोते जिन्होंने बालक को विष दिया था अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर कांतिविहीन हो गए। हे राजन, शोक करते हुए उन्हें ऋषि अंगिरा के उपदेश स्मरण हो गए आए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार वे यमुना के तट पर गई, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। तात्पर्य, इस श्लोक में बाल हत्या हत प्रभाह पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बाल हत्या के प्रथा दीर्घकाल से मानव समाज में चली आती रही है, किंतु उस समय यह विरले ही की जाती थी, किंतु आजकल कलिकाल में गर्भपात भ्रूण हत्या एक सामान्य बात हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती है। यदि कोई स्त्री ऐसा जघन्य कार्य करती है, वह धीरे धीरे अपने शरीर के कांति खो देती है। बाल हत्या हत प्रभाव, यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन स्त्रियों ने बच्चे को विष देने का घोर पाप कर्म किया था, वे अत्यधिक लज्जित थी और उन्हें ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। यदि किसी स्त्री ने कभी ऐसा दुष्कृत्य किया हो तो उसे प्रायश्चित करना होता है, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्री बाल हत्या के अपराधी होते हैं, उन्हें इस जीवन में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ आत्माओं को बाल हत्या से विरत होना चाहिए और अपने दुष्कर्मों के लिए गंभीरता पूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई निरपराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो तुरंत ही उसके सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि ऐसे कर्म पुनः न करे, क्योंकि यह पाप है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर लिदा विशाखा देवी, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौरनिताय, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को हम सबको यहाँ पे कथन एवं श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अभी तो उन आचार्यों की तथा भगवान की अशेष कृपा करुणा है, जिसके कारण हम कुछ काल उनके दिव्य गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए इस आलोच्य श्लोक पर आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की हम चेष्टा करेंगे। तो यह अध्याय राजा चित्रकेतु की परमेश्वर में परमेश्वर से भेंट की शीर्षक अध्याय है। तो यहाँ पे कैसे नारद तथा अंगिरा मुनि के द्वारा वो जीव पुनः जीवात्मा आकर के कैसे समस्त संशय का समाधान किया, तदुपरांत राजा चित्रकेतु कैसे पुत्र शोक के मोह से मुक्त हुए, तथा इस श्लोक में 14 नंबर श्लोक में रानियां जो कृतधति की सोते थी, जो पटमहिषी की सोते थी, तो वो कैसे बाल हत्या करने के उपरांत उनका तेज क्षीण हो गया, तेज प्रवाह बाल हत्या के कारण उनका तेज नष्ट हो गए, श्रीहीना हो गई, इस संबंध में इस श्लोक में चर्चा किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में विशेष करके बाल हत्या हत प्रवाह इस पद को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बाल हत्या की जो प्रथा है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनेक काल से ही चलती आ रही है, किंतु उस समय यह विरल स्थिति में ऐसे देखने को मिलता था, लेकिन कलिकाल में विशेष करके यह साधारण सी बात हो गई है। तो जब समस्त कृतधति के सोतों का जो भगवान के दिव्य कथा तथा उन जीवात्मा के द्वारा प्रवचन सुनने के बाद मोह भंग हुआ और वो अत्यंत यहाँ पे वर्णित है कि लज्जित हुई और बाल हत्या के कारण उनका जो तेज था क्षीण हो गया, बाल हत्या हतप प्रवाह हीन हो गए वो, प्रभावों से समस्त शारीरिक द्युति स्त्रियों से वो नारियां जो पुत्र हत्या के पाप में संलग्न थी, वो समस्त नारियां चित्रकेतु की जो रानियां थी वो बाल हत्या के कारण स्त्री से हीन हो गए। यहाँ पे देखने योग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं कि बाल हत्या अत्यंत जघन्य पाप है, और विशेष करके प्रभुपाद जी वृण हत्या या गर्भपात के विषय में आलोकपात कर रहे हैं। पुराणों में वर्णना है कि पाप के बारे में अनेक अनेक पाप की श्रेणियां अनेक पुराणों में वर्णना है। गरुड़ पुराण में एक एक पाप के लिए कौन कौन से नरक की योनि प्राप्ति होती है, इस संबंध में चर्चा किया गया है। तो और तथा पद्म पुराण में भी इसका टिप्पणी दिया गया है। तो उसमें वर्णना है, हम अज्ञानवशतः साधारणतः दैनंदिन जीवन में अनेक ही पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र ही एक पाप योनि है, तो ज्ञातवश या अज्ञातवश ये पाप कर्म करता ही रहता है। जैसे हम जब चलते हैं तो हमारे चरण के तलवे के नीचे अनेक जीव का वध हो जाता है, हाथ को मंथन जब करते हैं इसमें भी कई जीव की वध हो जाता है। ऐसे पंच पापों के बारे में विशेष करके गृहस्थों को वर्णना किया गया है, उनके लिए पंच सुना यज्ञ की विधान प्रदान किया गया है, क्योंकि उनके सभी के द्वारा ही पाप कर्म होते ही रहते हैं। वैसे वर्णना किया गया है 1000 साधारण जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं अणु जीव, उनको अज्ञान वशतः कोई बध कर ले तो उसमें जितना पाप होता है एक जीव को वध करने से, हत्या करने से, यानी कि छोटी अणु जीव को हत्या करने से, ज्ञातवश यानी कि जानबूझ के हत्या करने से उतना पाप लगता है। तो जैसा कि वैष्णव परंपरा से आने से पहले विशेष करके मनुष्य में पाया जाता है, कोई राजसिक तामसिक प्रवृत्ति की हो या ना हो, लेकिन मच्छर मारना तो सबने किया है या नहीं? ऐसा शायद कोई विरला व्यक्ति हो सकता है जो कि कहेगा कि मच्छर नहीं मारा हूं मैं। लेकिन वैष्णव परंपरा में आने के बाद हमको ज्ञात होता है कि मच्छर मारने से एक नरक की प्राप्ति होती है। भागवत में वर्णना है मच्छर मक्खी को जो मारते हैं उनके लिए एक विशेष नरक की बात वर्णना किया गया है। तो ऐसे जानबूझ करके जो जीवों की हत्या करते हैं, 1000 पाप अज्ञातवस्थ जितना हम करते हैं एक पशु की या जीव की अणुजीव की हत्या करने में, उतना पाप ज्ञातवशतः एक जीव की अणुजीव की हत्या करने में पाप लगता है। वैसे जानबूझ करके 1,00,000 कोई अणुजीव की हत्या करता है जितना पाप लगता है, 1 पक्षी की वध करने में उतना पाप लगता है। 1 पक्षी की वध, और संसार में जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं आजकल प्रायतः सभी लोग पक्षियों का मांस खा रहे हैं, वध कर रहे हैं, तो सोचिए उनका कितना ना पाप लगता होगा। ज्ञात वस्ता कोई अणुजीव की 1,00,000 ऐसे अणुजीव की हत्या करे तो 1 पक्षी की मारने का पाप उसको लगता है। वैसे 1,00,000 पक्षियों की वध करने में जितना पाप लगता है, 1 पक्षी की अंडे को उसको फोड़ने में, नष्ट करने में उतना पाप लगता है। और आजकल जैसे कि एक बार हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी क्लास दे रहे थे, मैं सुना, वो बोल रहे थे कि आजकल यह सरकार प्रचार कर रहा है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन जब जमराज के पड़ेंगे दंडे सब हो जाएंगे ठंडे। तो यमराज का डंडा पड़ेगा निश्चय, इसमें तो कोई संशय है नहीं, और भयंकर पड़ेगा, भयंकर रूप से वो डंडा पड़ेगा। कितनी प्रकार की नरक की योनि में जाना पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं, मुझे स्मरण है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, हम देखते थे सुबह, हम तो भक्ति में थे इसके कारण सुबह उठ के जप करते, तो देखते 4 बजे ही एक बड़ी गाड़ी आती थी, ट्रक पूरा, तो उसमें पूरा अंडा ही अंडा रहता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लगभग 1,00,000 स्टूडेंट थे मणिपाल यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए वो माने जो उनके बच्चों के लिए सुबह में देख रहा हूं प्रायतः भौतिक जगत में वो अंडा ही खा रहे लोग। तो कितना अनगिनत पाप हो रहा है इसका कोई अनुमान ही नहीं है। तो पुराण कहते हैं कि ऐसे 1,00,000 पक्षियों की वध करने में जितना पाप लगता है, उतना पाप 1 पक्षी की अंडा को फोड़ने में, नष्ट करने में उतना पाप लगता है। वैसे ऐसे 100 अंडों को नष्ट करने में जितना पाप लगता है, 1 युद्ध अतिरिक्त हस्ती को वध करने में उतना पाप लगता है। साधारणतः पूर्व काल में युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाता था, तो लेकिन युद्ध में जब हाथी का वध होता है तो वो कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि वो तो युद्ध चल रहा है, जैसे भीम जी ने 1 अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया था। लेकिन युद्ध अतिरिक्त कोई हाथी का वध करता है तो भयंकर पाप लगता है। तो ऐसे युद्ध अतिरिक्त हाथी, कोई 1 करोड़ हाथी का वध करने में जितना पाप लगता है, 1 गाभी की यानी कि 1 गोमाता का वध करने में उतना पाप लगता है। और वैसे 1 करोड़ गाभी की हत्या करने में जितना पाप लगता है, 1 मानव की हत्या करने में उतना पाप लगता है, मनुष्य का। और वैसे ही 1 करोड़ मानवों का तो कोई तो वध किया ही नहीं होगा शायद, 1 करोड़ मानव का वध कोई किया है शायद इतिहास में, शायद ही वर्णना हो। 1 करोड़ मानव का वध करने में जितना पाप लगता है, 1 भक्त या ब्राह्मण की वध करने में उतना पाप लगता है। तो 1 करोड़ मनुष्य के समतुल्य 1 वैष्णव है, 1 ब्राह्मण है, सदुपचार 1 ब्राह्मण है। तो वैष्णव को हंती निंदंती जो वर्णना है, जो कोई भी किसी प्रकार से शारीरिक मानसिक या वाचिक पीड़ा देता है तो भयंकर पाप है। और ऐसा वर्णना ही चैतन्य भागवतम में वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु की व्यास पूजा कर रहे हैं उस संदर्भ में वर्णना है, वहां पे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि 100 जीवों को पाप करने में जितना पाप लगता है, 1 वैष्णव अपराध होने से उतना पाप लगता है। कोई भी यद्यपि कलयुग में मानसिक पाप ग्रहण यह है नहीं, लेकिन वैष्णव के विषय में अगर कोई मानसिक अपराध कर ले, मानसिक मन में ही चिंता कर ले कि अमुक है समुक है, तो वो अपराध लग जाता है। और अपराध एक अपराध हुआ तो 100 के बराबर 100 पाप के बराबर है। तो यहां पे पापों की गिनती जैसे बनना है, ऐसे एक करोड़ मानवों की हत्या करने में जितना पाप लगता है, एक ब्राह्मण या एक वैष्णव की हत्या करने में उतना पाप लगता है। वैसे 1 लाख ब्राह्मणों की हत्या करने में जितना पाप लगता है, उतना पाप एक स्त्री की पाप करने हत्या करने में उतना लगता है, क्योंकि स्त्रियां शारीरिक रूप से अबला होती है और विशेष रूप से भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए उनकी जो चेतना है बड़ी कोमल होती है, और स्त्रियों का हत्या वध बड़ी ही जघन्य पाप माना गया है। तो ऐसे 1 लाख ब्राह्मणों की हत्या करने में जितना पाप लगता है, एक स्त्री की हत्या करने में उतना पाप लगता है। वैसे 50,000 स्त्रियों की वध करने में जितना पाप लगता है, एक बालक की वध करने में उतना पाप लगता है। और वैसे 1 करोड़ बालकों की वध करने में जितना पाप लगता है, एक वृण की एक गर्भपात करने में उतना पाप लगता है। तो सोचिए पाप की जो श्रृंखलाएं हैं, जो कि पुराणों में वर्णना है, उसकी कितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए समाज में। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहां पे बड़ी ही गुरुत्वारोप कर रहे हैं कि जो गर्भपात या भ्रूण हत्या हो रहा है, वो आज के समय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक सामान्य सी बात हो गई है, साधारण सी बात हो गई, तो कितना भयंकर यह पाप है। तो एक पुराणों में वर्णना है कि नारद मुनि एक बार एक गोचारण भूमि के ऊपर जा रहे थे, अकेले ही जा रहे थे, तो निकट में गोचारण भूमि के निकट एक शूद्राणी वहां पे कुछ पका रही थी। तो नारद मुनि को वो देखी दूर से, तो क्या पका रही थी, वो कुत्ता और सुअर का मांस को बना करके खिचड़ी कर रही थी एक शूद्राणी। और किस तेल से छोंक दे रही थी, कुत्ता के चर्बी से बनी हुई तेल से वो छोंक दे रही थी। और उसको देखते, जब वो देखी कि नारद मुनि आ रहे हैं, उसके मन में यह विचार आया कि इसके तो कोई, उसको तो ज्ञान ही नहीं था सामाजिक संस्कारों के बारे में। तो वहां पे पाप के अंतिम स्थिति में वर्णना है, ऐसे जो हमने गिनती किए, ऐसे 1 करोड़ गर्भपात कोई कराता है, शिशुओं की भ्रूण हत्या करता है, जितना पाप लगता है, वैसे कोई गोचारण भूमि पर अगर खेती करे या उसको अपना कब्जा में लाने का प्रयास करे, तो उतना पाप लगता है। बड़ी ही भयंकर पाप है। गोमाता के लिए जो संश्लिष्ट जो भूमि प्रदान की गई है, उसमें अपनी कब्जा जो करे कोई, तो बड़ी ही घातक पाप होता है। तो निकट में गोचारण भूमि था, तो वो शूद्राणी ऐसा अपना दैनंदिन जो उसका जो जो क्या भोग क्या कहे क्या खाद्य ही कहे वो ऐसा खा रही थी। लेकिन वो भी विचार की, उसको भी इतना ज्ञान था कि गोचारण भूमि किसी के कब्जा में नहीं रहता है, वो विचार की ये कोई बाबा जी आकर के इस गोचारण भूमि में कब्जा करने वाला है, और ये अगर मेरी खाद्य को देखेगा वो मेरा खाद्य अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए क्या कि अपने पल्लू में वो खाद्य को उसको ढक दी। तो नारद मुनि आश्चर्य हो गए, एक शूद्राणी इस प्रकार का जघन्य पाप कर्म में लिप्त है और कुत्ता और सुअर का मांस में खिचड़ी कर रही है और कुत्ता के चर्बी के तेल से छोंक दे रही है, उसको भी मुझे देखकर कि इतना क्यों घिन्ना हो रहा है। तो वो जाकर के पूछे उस शूद्राणी से, तो ये क्या रहस्य है। तो शूद्राणी बोली, मैं सोची कि शायद आप इस गोचारण भूमि पे कब्जा करने वाले हैं और आप, आपका दृष्टिकोण मेरे खाद्य पे पड़ जाएगा तो मेरा खाद्य अशुद्ध हो जाएगा। तो वो बोल रही मेरा खाद्य अशुद्ध हो जाएगा। तो इससे सोचिए समाज में अब पाप का स्थिति कितना गंभीरता पूर्ण स्थिति में अभी चल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी यहां पे कह रहे हैं भ्रूण हत्या एक सामान्य सी बात हो गई है, सामान्य सी बात हो गई। भ्रूण हत्या क्यों होता है? क्योंकि जो विशेष करके जो चार पाप का केंद्र बिंदु है कलिकाल में, द्वितीयपान स्त्रीय सुना, अवैध स्त्री संग के कारण ही जो पाप कर्म होते हैं और उसके कारण समाज में उस पाप को छुपाने के लिए ही जो जो तथाकथित जो नारियां हैं या उस जो जर जागत की पुरुष हैं वो भ्रूण हत्या में संलग्न होते हैं। ऐसे कि विवाह बंधन के बाद भी इंद्रियों का संयम न होने के कारण इस प्रकार का गलत कर्म में वो लिप्त रहते हैं और अवांछित संतानों से बचने के लिए भ्रूण हत्या या गर्भपात कराते हैं। लेकिन इसकी कोई सीमा ही नहीं इस पाप की, और इसका परिणाम भी इतना भयंकर है वो कहना ही नहीं है। तो लेकिन यहां पे अगर वो प्रायश्चित करे, श्रील प्रभुपाद जी अंतिम में कह रहे हैं कि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जब एक शब्द बड़ा विशेष रूप से लगाते हैं, निरअपराध भाव से करेगा तो वो पाप जा सकता है, लेकिन अन्य कोई उपाय नहीं। यद्यपि जीवों के द्वारा अनेक उपाय जन्मों जन्मों से ही होती ही आ रही है, लेकिन भगवान की नाम की इतनी महिमा है कि समस्त पाप उस भगवान के नाम के द्वारा तिरोहित हो जाते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान यहां पर कह दिए कि जितनी भी पाप है, जो जो हम पाप की गिनती के साधारण दृष्टि से, वो समस्त पाप चला जाएगा और मैं तुमको मेरी धाम को प्रदान करूंगा। लेकिन यहां पे निरपराध रूप से करने की बड़ी आवश्यकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के कृपा से भक्त तो बन गए, क्या हम निष्पाप हो गए? यह एक बड़ा प्रश्न है। हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसे यहां पे परपोट में कह रहे हैं कि निर अपराध भाव से, अपराध विहीन अगर भजन करेंगे तभी जाकर के समस्त पापों से मुक्त होंगे। लेकिन अगर अपराध हो रहा है और नाम भी हो रहा है तो हम पाप से मुक्त हुए नहीं है। और इस प्रकार का जो कर्मों का जो फल है अनादि जन्मों का है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनादि कर्म फले पौड़ी भवार नव जले तरी बारे ना पाइलु पाय। अनादि जीवन का कर्म फल है और इससे तरने का कोई भी उपाय है नहीं, कोई भी उपाय है नहीं। और ऐसा हमारा जीवन भी अनेक पाप कर्म में लिप्त ही है। आमार जीवन सदा पापेरत नहीं को पुण्येर लेश। हमारा जीवन हमेशा पाप कर्म में ही लिप्त है। भक्ति विनोद ठाकुर हम सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करके मानो कह रहे हैं नहीं को पुण्येर लेश, एक पुण्य का कण भी नहीं हमारे अंदर। और हमारी प्रवृत्ति क्या है? परे उद्वेगे दिया छे जे कत दिया छे अन्येर क्लेश। अन्य को क्लेश देने में ही हमको आनंद लगता है। जीव को यह स्वभाव हो गया, ऐसे कि हम वैष्णव हो गए, इस अवगुणों से हम भी मुक्त नहीं हुए। हमको हरेक दिन ही अपने आप को प्रश्न करना चाहिए, दूसरों के प्रगति से क्या हमको जलन होती है? एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जब सेमिनार मैराथन होता है, अंतिम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक वरिष्ठ भक्त ऐसा कह रहे थे कि जब कोई भक्त का सबसे टॉप स्कोर रहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो दूसरा भक्त सारे भाई मेरा नहीं हुआ, मैं भी अगर फास्ट होता तो मुझे भी तो सम्मान मिलता सबके सामने। हाँ, तो दूसरों के उन्नति से वैष्णव को आनंदित होना चाहिए, नहीं कि उसका टांग खींचना चाहिए। संसार में जितनी प्रकार की समस्या होती है, विशेष करके कोई भी संप्रदाय कभी टूटा है, कोई भी संस्था टूटा है, तो अंदरूनी समस्या के कारण ही टूटा है। इसलिए प्रभुपाद जी भी बोले, अगर भविष्य में कुछ समस्या होगा तो हम भक्तों के द्वारा ही यह क्रिया होगी। तो इसलिए जो परेर उद्वेगे दिया छे जगत, दूसरे को उद्वेग देने में, दूसरे को कष्ट देने में हमको आनंद लग रहा है, या दूसरे के सुख से हम भी सुखी हो रहे हैं। और जीव का साधारण स्वभाव है, दूसरे को कष्ट देखता है तो उसको आनंदित होता ही है। मुझे स्मरण है बाल्यकाल में मैं छत पर जब खेलता था, बाजू में एक पड़ोसी थे, मैं देखता था वो केला खाते थे। वो केला खा करके एक दिन में देखा वो केला को रास्ते पर फेंक देते थे सामने, और प्रतीक्षा करते कौन गिरेगा अभी कौन गिरेगा। और जब तक गिरेगा नहीं, मैं देखा, अच्छे से मुझे याद है, ऐसे नाखून को घिसते थे। और जब कोई गिरा नहीं, ओह गिरा नहीं, ऐसा बोलते थे। और जब कोई गिर जाएगा, ताली बजाते थे धीरे धीरे और छुप जाते थे नीचे, दीवार के नीचे से। दूसरों को कष्ट देखने में आनंदित होता है। मुझे स्मरण है अभी बिहार में हमारी भागवत सप्ताह थी, तो मैं एक ऊंची सीढ़ी था पंडाल में चढ़ने के लिए, तो छठवां दिन तक तो कोई समस्या हुआ नहीं, लेकिन जब सातवें दिन क्या हुआ, वो सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते मैं गिर गया, और तब एक ठहाकार होकर हंसने लगे लोग, माने जो साधारण भौतिक लोग थे। हाँ, मैं जब गिर गया उनको बड़ा आनंद लगा, अरे बाबा जी गिर गया अभी तो दूसरों को कष्ट देखने में ही लोगों को आनंदित होता, ये लोगों का स्वभाव हो गया। हमको भी अपने ऊपर प्रश्न करना चाहिए कि उस प्रकार की सुख भावनाएं का क्या हमारे अंदर भी आ रहा है। और कर्म का फल ऐसा सूक्ष्म होता है, उसका परिणाम एक अंग अगर किया है वो उस अंग को ही भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्र में बनना है। कोई अगर लंगड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उस पैर में किसी को लात मारा होगा किसी जीवन में। कोई अगर अंधा हुआ है, निश्चित रूप से वो गलत दृश्य देखा होगा, इसी के कारण वो अंधा हुआ है। किसी का गला काम नहीं कर रहा है, बहुत ही कटु वचन बोला होगा, इसी के कारण वो गला में उसका आवाज नहीं आ रहा है, बड़ा क्रूर, कभी कभार क्रूर शब्द निकलता है। इस संबंध एक कथा भक्तगण कहते हैं, एक बार कर्मों का फल जिसको हम दुष्प्रारब्ध कहते हैं, और ये एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का पाप है। कई बार 84 लाख योनि में हम गए हैं, कई बार हमने पाप किया है, तो उसी के परिणाम हमको भुगतना ही पड़ता है, इसमें कोई संशय है नहीं। एक बार एक व्यक्ति, देखे गर्मी का दिन था, उनको आम खाने की बड़ी इच्छा हुई, तो एक बड़ी आम की बगीचा था उस गांव के जो मुखिया का बगीचा था, तो एक चौकीदार उस बगीचा का रखवाली करता था। बड़ी बगीचा थी, कौन देखता है, तो किसी सूत्र से वो बगीचा के अंदर पहुंच गए, और तो देखे कि आम बड़ा सुमिष्ट आम वृक्ष पे लटक रहा है, तो आम खाने की बड़ी इच्छा हुई। तो उनका जो आँख है उसी आम के प्रति दृष्टि गया, तो आँख ने तो देखा है या नहीं, लेकिन आँख तो खा नहीं सकता ना, आम खा सकता है, और आम खाने के लिए आम को तोड़ना पड़ेगा। आँख ने तो देखा, लेकिन उस आम को तोड़ने के लिए क्या प्रयोग किए, एक पत्थर उठाए और हाथ का प्रयोग किए। ऐसे आंख ने देखा और हाथ ने पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके आम को मारा, आम गिर गया, और आम तो गिरा लेकिन खाएगा तो हाथ नहीं ना, खाएगा मुख ही तो मुख ने खाया, जीभा ने आस्वादन किया, और उस जीभा का आस्वादन भी, इतना जड़ जगत में आहार के प्रति भी लोग लालायित हैं, वो जीभा का आस्वादन भी इस कंठ प्रदेश तक ही सीमित है। इसके बाद जो तृप्ति होती है, आनंद होती है, वो उदर को ही होती है। मुख खाता है, जीव आस्वादन करता है, लेकिन तृप्ति का अनुभव उदर के द्वारा ही होती है। तो उदर ने भी बड़ा तृप्ति का अनुभव किया जब आम खाया, सुमिष्ट आम, और खा करके बड़ी आनंद से आम खा रहे हैं, एक एक आम खा रहे हैं, जितना आम तोड़े। और जब आम गिरने का आवाज आया तो पीछे से चौकीदार भी चौकन्ना हो गया, और चौकीदार बोला आज सही सीख दूंगा उसको मैं, एक बड़ा डंडा ला करके धीरे 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 पीछे से आया, एक पीठ को लगाया डंडा लगाया, वो आह करने लगा व्यक्ति, तो अभी भुगत, तेरा आम का बगीचा है, तू क्यों खाने के लिए आ गया यहां पे? तो जैसा करना वैसा भरना, ऐसा बोला वो चौकीदार। तो उस व्यक्ति ने बड़ी ही दुख में मार तो खाया ही है, लज्जा भी अनुभव हुआ है, जाकर के बगीचे के बाहर देखा एक संत बैठे हुए थे, जाकर के जा रहा था तो संत पूछे, कह रहे बेटा क्यों दुखी दिखाई दे रहा है? बोले क्या करूं, एक दो आम खाया तो बहुत मार पड़ी बहुत मार पड़ी है, पता नहीं। वो बोला कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तू आम खाया वैसा दंड भुगत। तो मेरी एक प्रश्न है, वो व्यक्ति पूछा, मेरा एक प्रश्न है, आप तो सन्यासी है, साधु हैं, बताइए, मेरा दुष्ट आंख ने तो ये देखा, आम खाने के लिए विचार आया, अलग अलग अंग उसके अलग अलग तृप्ति पाए, लेकिन मार क्यों पीठ खाया? पीठ ने क्या दोष किया था पीठ क्यों मार खाया? तो साधु बोले इतना में क्यों रुक गया, थोड़ा आगे चल, पीठ तक ही तो सीमित, जब पीठ में मार खाया रोया कौन रोया भी तो आंख ने ही ना तो जो अदुष्ट अंग आंख ने देखा उसी अंग ने ही दंड भुगता। प्रारब्ध का फल ऐसा होता है, जिस अंग वो पाप करता है उस अंग ही उसका दंड भुगतता है। इसलिए ये जो जीवन की जो परिपाटी है, पाप पुण्य से संश्लिष्ट है, और विशेष करके मनुष्य योनि में अनेक पाप कर्म होता ही, और पाप कर्म का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि जो पाप कर्म में लिप्त है और जिनके अंदर पाप है उनको भक्ति के प्रति विश्वास नहीं होता है। यह हम प्रत्येक दिन ही प्रसाद पाने से पहले कहते हैं, क्या कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, उसके बाद लाइन जो क्या है, स्वल्प पुण्य बता राजम विश्वास नैव जायते। स्वल्प पुण्य, जिसका पुण्य कम हो, स्वल्प हो, विश्वास नैव जायते, उसको विश्वास नहीं होता है। हरि नाम में और हरि में कोई अंतर है नहीं, फिर भी अनेक भक्त प्रश्न करते हैं कि हरि नाम में क्यों हमारा रुचि नहीं हो रहा है। रुचि यह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाप कर्म अभी भी है, पाप का परिणाम शरीर में, वाणी में, चेतना में अब भी है, इसके कारण हरि नाम के प्रति रुचि नहीं हो रहा है। स्वल्प पुण्य बता राजन विश्वास नहीं बजायते। तो ये समस्त पाप कर्म के कारण हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आता है, भक्ति के प्रति दृढ़ता नहीं आती है। साधक भक्तों के जीवन में एक ही कमी है, वो है दृढ़ विश्वास, और उसी के अनुसार दृढ़ निश्चय। जब विश्वास नहीं होता है निश्चयता भी क्षीण हो जाती है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और पाप का कारण क्या है, कामना आशा, कामना के विनाश से दुख का विनाश होता है। पाप कर्म में हम संश्लिष्ट नहीं होते, लेकिन जब तक यह कामना रहेगा, और यह कामना भी शरीरात्मक होता है, जैसे कि यहां पर रानियां, उनको भी पुत्रवती होने का परम इच्छा थी, ईर्षा थी, इसलिए क्योंकि हुआ नहीं, जो ज्येष्ठा रानी थी उसको हो गया, तो इसके कारण उनमें बड़ी द्वेष भाव आ गया। तो इसलिए इस समस्त आशाओं से जब हम मुक्त होंगे, कामनाओं से मुक्त होंगे, तभी ही हम भगवान की भक्ति में संश्लिष्ट हो सकते हैं। इसलिए आचार्य गण कहते हैं निष्काम रूप से भजन करना चाहिए, नहीं तो हम जैसा कि साधारणतः हम मांगते हैं जय जगदीश हरे में, धन दे सब दे सब दे सब दे, सब अच्छा अच्छा चीज ही मांगते हैं। लेकिन भक्त लोग यह विचार करते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भजन, निष्काम भजन से, कामना विहीन भजन से ही, भक्ति से ही, हरिनाम से ही जीवन का श्रेय प्राप्त होगा। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी अनुभूति है, स्मरण हो रहा है, उसको कहकर के कथा को विराम करेंगे। आशा कैसा भयंकर होता है और आशा का नष्ट कैसे आचार्यगण करते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में स्मरण करता हूं। तो 94 साल की बात है, तो श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से, परम पूज्य गौरव गोविंद स्वामी महाराज जी के कृपा से हम भक्ति में आए। 94 साल की बात है, तो उन्होंने ही जप माला दिया। 94 की जनवरी 1 तारीख थी। तो कुछ दिन के बाद मैं उस समय स्कूल में था, वहाँ पे डीएवी स्कूल थी भुवनेश्वर में, वहाँ पे पढ़ाई करता था। तो उस श्रेणी में उसे साइंस एग्जीबिशन था हमारा। तो सुबह सुबह मैं हमेशा 4 बजे आकर के कृष्ण बलराम गुरु नित्य जगन्नाथ का दर्शन करता था और महाराज जी को प्रणाम करके जाता था। तो उसी दिन लेकिन एग्जीबिशन थी और एक मिनिस्टर आने वाले थे उसको देखने के लिए। तो बड़ी मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं क्लास में फर्स्ट होऊंगा। तो इसी के लिए सोचा कि महाराज जी से का आशीर्वाद लेके जाऊं, अच्छा हो जाएगा। आशा थी कि उत्तीर्ण हूं, कुछ चीज मिले। तो गया, तो पहुंचते पहुंचते महाराज जी का दरवाजा बंद था और दर्शनार्थी हो रही थी मंदिर में। तो दर्शनार्थी करने के बाद गुरु पूजा हुआ, तो नीचे आया तो महाराज जी, स्वतः में निकल रहा हूँ नीचे, गोपीनाथ मंदिर से नीचे महाराज जी भी निकल रहे, शायद क्लास के लिए निकल रहे थे। तो मैं प्रणाम किया, तो प्रणाम किया और बोला, अरे आज क्या तू टाइफाइड लगा करके आया है? बड़ी सज धज के गया था, एग्जीबिशन थी। तो बोले महाराज जी, और तो महाराज ने गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव, और आज स्कूल में एग्जीबिशन है तो इसलिए मैं आया हूँ भगवान का आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा, क्या इच्छा है तेरी? बोले कि मैं, मुझे फास्ट होना है। मुझे फास्ट होना, यही इच्छा है। अरे तो इसलिए मंदिर आया है, इसलिए मंदिर आया भगवान को प्रार्थना के लिए, जड़ जागतिक चीज मांगने के लिए? हाँ, कितने फास्ट हुए, कितने गए, इनका ठिकाना नहीं रहा, और इसके लिए कृष्ण बलराम को ये भिक्षा मांगने के लिए आया है? तो अच्छा, तू बता तो तेरी जीवन की आशा क्या है, तेरा भविष्य पूछते हैं ना बच्चों को, तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तुम्हारा क्या इच्छा है? तो महाराज जी पूछे, मैं सोचा कि मैं भी बताऊं, मेरी मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। मैं बता दिया कि मुझे महाराज साइंटिस्ट बनना है। अच्छा, साइंटिस्ट बनेगा तो कहां जाएगा? तो महाराज जी पूछे, तो मैं बोला कि मैं नासा जाऊंगा, अमेरिका में नासा कंपनी है ना, वहां पे रिसर्च करते हैं। तो महाराज जी तुरंत उनके मुखारविंद पे क्रोध प्रकट हो गया और बोले, नासा नहीं नरक जाएगा। नासा नहीं नरक जाएगा तू, और भगवान की भक्ति में और ऐसा तुच्छ इच्छा कर रहा है। बोले कि नासा यानी कि न आशा। नासा न आशा, तो नासा का छोड़, सब आशा का छोड़ करके, कामना का छोड़ करके कृष्ण बलराम का भजन कर, जप कर, और दैनंदिन जीवन में जो कर्म हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन जीवन का लक्ष्य यह है कि हमारा कृष्ण के चरणों में और भगवान के नाम में रति मति और भक्ति हो जाए, यही जीवन की आशा है। और आशा करेगा तो पाप कर्म में लिप्त होगा, क्योंकि आशा जब तृप्ति नहीं होती है तो दुख होता है, और दुख के कारण दूसरे लोग जब सुख पाते उसमें हमको पीड़ा होती है। तो इस प्रकार के जो पाप की जो सुख विचार है, बड़ा ही चिंतन की बात है। तो जब तक हम इन समस्त पापों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारा भजन के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा, रुचि और इच्छा जागृति नहीं होगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अंतिम में कहते हैं, यद्यपि कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, लेकिन गंभीरता पूर्वक कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है लेकिन निरपराध भाव से अपराध विहीन होकर भजन करता है, तभी जाकर के समस्त पापों से मुक्त होकर के वो भगवान के शरणागत होकर के भगवान की कृपा का भाजन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।